तो एहराम से मुतल्लिक देखिएगा, मीकात से पहले एहराम पहनना, ऐसा करना दुरुस्त है। अलबत्त एहराम की नियत मीकात से ही करना होगी। जैसे आप देखिए सिस्टर्स हैं, आप कल भी हमने बात की, यहाँ भी आप पढ़ लेंगे, किताबों में भी मिलता है, औरत का एहराम कुछ भी नहीं है, आपके यही कपड़े आपका एहराम है। आप अपनी सहूलत के लिए बाल ना टूटे या सहूलत रहे, आप सर पे कोई रुमाल बांध लेते हैं, स्कार्फ ले लेते हैं, आपकी खुशी है। सफ़ेद रंग का होना कोई शर्त नहीं है, नीला, सब्ज़, काला होना, किसी रंग की कोई ममानियत नहीं। आम सीधे सादे कपड़े जो हम मौसम के मुताबिक पहनते हैं, कोशिश करनी चाहिए सातिर कपड़े हों, बारीक ना। आजकल तो एक जुल्म जो चल पड़ा है, जो टखने नंगे हो गए हैं, मुझे तो उससे इतनी वहशत घबराहट। अच्छे अच्छों के टखने नंगे हैं, यानी मैं हैरान होती हूँ कि मर्दों को टखने ऊंचे रखते हुए शर्म आती है और औरतें आज नीचे करते हुए शर्म आती हैं। अब ऐसे जोड़े जो आप लॉन के पहनते हैं, और अगर इवन अबाये भी बाज़ लोग पहनते हैं तो वो थोड़े ऊंचे होते हैं, तो औरत का पूरा पाँव छुपा होना चाहिए, ये एक लाजिम चीज़ है। और ये कपड़े सिर्फ हमारे हज और उमरे के लिए क्यों रह जाए, यही कपड़े तो बाद में, आप हर वो कपड़ा जिसमें नमाज नहीं पढ़ सकते, आप बाहर आए, आप बाहर नमाज का वक्त हो गया, नहीं नहीं मेरे कपड़े ऐसे नहीं है, यही सातिर नहीं, दैट मीन वो कपड़े आपके इंडोर कपड़े थे, आप अपने कमरे में पहन लेती हैं, आप गलती से बाहर पहन के चली गई हैं। तो साफ सुथरे ढीले ढाले कपड़े मौसम के मुताबिक आप पहन सकते हैं। हाँ, लेकिन एहराम की नीयत होती है। अब यहाँ से जैसे आप लोग मिसाल है कि नॉर्वे से जाते हैं, रास्ते में मीकात आएगा, अब जहाज में मर्दों को एहराम बांधना मुश्किल लगता है। पाकिस्तान से जैसे लोग आते हैं तो अमूमन लोग पाकिस्तान एयरपोर्ट पे बैन लेते हैं, तो ये सहूलत है। अगर अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी मुश्किल में डाल देता, क्या कि आपने बिल्कुल ऐन मीकात से पहले चंद मिनट आपने एहराम पहनना, तो मर्दों के लिए कितना मुश्किल हो जाता। ठीक है, हाँ करना क्या, घर से आप जब यहाँ से जाएंगे ना, तो आप अपने आप को जिस लिबास हाल हुलिये में रखेंगे वैसे ही रखें, लेकिन जब वो मिकात से पहुँचेंगे ना, तो वो बताते हैं आपको पहले से, जहाज़ वाले ऐलान करते हैं 20 मिनट में, 15 मिनट में, इतने वक्त में हम मिकात से गुजरेंगे, तो उससे पहले फिर नीयत करनी होती है। वो नीयत क्या है, वो इंशाल्लाह आपको किताब में मिलेगी। तो ये सहूलत है, यदि आप यहाँ से नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर जा सकते हैं, वही आपका एहराम होगा। एहराम से पहले सर के बालों को जमाना, एहराम पहनने से पहले सर के बालों को गूंद या खतमी वगैरह, जिसको आज के दौर में वैक्स कहते हैं ना, लोग लगा लेते हैं ताकि बाल खुले नहीं, लगा कर जमाया जा सकता है। इस तरह गुबार बालों के अंदर दाखिल नहीं हो पाता, इससे मकसूद जीनत नहीं बल्कि बालों को गुबार और बिखरने की तकलीफ से बचाना होता है। चलें ये अपने जवान बच्चों को बताएं जो बड़े शौक से वैक्स लगाते हैं बालों में, तो वैक्स लगा सकते हैं बालों में ताकि बाल हिले जुले ना, अपनी जगह पे जम जाएंगे तो फिर टूटने का भी खतरा कम होता है। ठीक है, तो ये लगा सकते हैं। फिर इसी तरह मीकात के अंदर मुकीम अफराद के लिए जाए एहराम में आसानी। अब मैं और आप तो मीकात से बाहर से जाते हैं, लेकिन जद्दा में भी इवन जो लोग रहते हैं वो भी मीकात की हद के अंदर हैं। मक्का के जो मज़ाफात हैं, इर्द गिर्द की जगह हैं, उनके लिए क्या क्या वापस बाहर जाओ, वापस पीछे जाकर जहाँ मीकात है वहाँ नहीं, ऐसी नहीं। जैसे आपके बहुत सारे रिश्तेदार साथी होंगे जद्दा में रहते हैं, आप अक्सर देखते हैं वो आते हैं और वो अपने घर से ही एहराम पहनते हैं, मैं और आप नहीं पहन सकते वहाँ जाकर। पाकिस्तान से आप आते हैं या आप अमेरिका से आते हैं, जद्दा पहुँचने से पहले पहले एहराम पहनना लाजमी है, क्योंकि मीकात जद्दा से बाहर है, लेकिन जद्दा में रहने वाले वहाँ से पहन सकते हैं, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक सहूलत है। ठीक है, फिर इसी तरह से मक्की लोग मक्का मुकरमा से ही एहराम बांधकर मनासिक हज का आगाज़ करें। मक्का में रहने लोग के लिए तो और भी सहूलत है, घर से जल्दी से एहराम पहनना, जाकर फ़ौरन किया सफ़र में, जो ज़ाहिर है कि एहराम की हालत में मर्दों को काफ़ी मशक्क़त होती है, आदत नहीं होती, फिर कभी सर्दी लगती है, कभी कुछ भी है, वॉशरूम में जाना मुश्किल है, बीच में जो नमाज़ें आती हैं मुश्किल है, तो इसी में अजर है। लेकिन मक्का में रहने वाले वहीं से पहन सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। उम्रे से फारिग होकर हज के इंतज़ार में मक्का मुकरमा में ठहरने वाले, और इसी तरह हज और उम्रे की नीयत के बगैर यहाँ दाखिल होने के बाद मक्का मुकरमा से इरादा हज करने वाले अपनी जाए सुकूनत से ही एहराम बांधेंगे, ये भी आप बात समझ लीजिएगा। आपने जब यहाँ से गुजरना है तो मीकात से पहले एहराम बांधना ना, लेकिन जब आपने 7 ज़िलहज या 8 ज़िलहज के करीब निकलना है तो मक्का में अपने होटल से एहराम बांधना। दोबारा आपको मक्का छोड़कर मीकात पे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ये बात बताई जा रही है। मीकात के पास से इरादा है हज के बगैर गुजरने वाला जिस मुकाम पर हज का इरादा करे वहीं से एहराम बांधे, इस गरज से ना वापस मीकात जाए और ना मक्का मुकरमा पहुंचने तक एहराम बांधने को मौखर कर ले। ये ज़्यादा मसाइल वहाँ रहने वालों के लिए, हम लोग तो इससे मुबर्र हैं। अहले मक्का उम्रे के लिए हदूद हरम से निकल कर एहराम बांधे। दो चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारे गलती खाते हैं, एक है मीकात और एक है हदूद हरम। फ़र्क पता है आप सबको? हरम की हद एक ख़ास जगह तक है, मदीना से भी इवन और जद्दा से भी, जिधर से भी आप मक्का में दाखिल होंगे आपको बताएंगे हदूद हरम शुरू हो जाती है। मदीना में रहते हुए भी मदीना की हद है जो हरम यानी मस्जिद नबवी की हदूद है, इस तरह मक्का की भी हदूद है। मक्का में दाखिल होकर हदूद हरम और है, मीकात बिल्कुल और चीज़ है। मीकात तो मक्का से बहुत बाहर है लेकिन हदूद हरम मक्का के अंदर ही है। ठीक है, फ़र्क क्या दोनों में? हदूद हरम के अंदर जिसने नमाज़ पढ़ी ऐसे ही है जैसे हरम में जाकर पढ़ी, ये भी अल्लाह की सहूलत है दी हुई। देखिए इस दहाम लाखों लोग होते हैं वहाँ, सड़कों पे भी नमाज़ पढ़े। अब हर एक हरम किस चार दीवारी में नहीं जा सकता, अगर कोशिश की नहीं गया अल्लाह ने उसका अजर पूरा लिख दिया। अब आप देखिए हर होटल के अंदर मस्जिद बन चुकी है, आप जितने बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं उन्होंने ऐसे अंदाज से अंदर अपने मुसल्ले और मस्जिद बनाई है कि बास जगह से नजर भी आता है। जैसे टावर में जो मस्जिद औरतों का मुसल्ला है, उधर अगर नमाज पढ़ें तो सामने आपको हरम अंदर नजर आता है। तो ये वक्त के साथ सहूलतें हो रही हैं, अल्लाह ने इस सारे को हदूद हरम बनाया क्यों? और कहते हैं अल्लाह आलम कि ये वहाँ तक हदूद जानी है हरम की, यानी वक्त के साथ और से और लोग हज पे जाएंगे, ये सारे बड़े बड़े होटल भी एक वक्त आएगा ख़त्म हो जाएंगे, इसको फ्लैट करते जा रहे हैं। एक वक्त आएगा बहुत कई मील दूर तक एक खुला मैदान है जिसके अंदर हरम है, क्योंकि अल्लाह को पता है कि इतने लोगों ने आना है तो उनको वहाँ जगह देनी है। ठीक है, फिर इसी तरह से अहले मक्का उमरे के लिए हदूद हरम से निकल कर एहराम बांधेंगे, यानी हद से थोड़ा सा निकल कर एहराम बांध कर फिर वापस आ जाते हैं। फिर इसी तरह जूते और तहबंद, ये भी एक सवाल है कि एहराम में कैसा जूता पहने। तो मुहरम, मुहरम कौन होता है जो एहराम की हालत में? अच्छा, एहराम कपड़ों का नाम नहीं है, हमारे यहाँ वो सफ़ेद चादरों को एहराम कहते हैं ना, ये एहराम नहीं होता, एहराम कैफियत का नाम है। मैं एहराम में हूँ क्या मतलब कि आप मेरे ऊपर कुछ पाबंदियाँ लग गई हैं, वो कपड़ा एक सिंबल होता है, उस कपड़े का एहराम से कोई ताल्लुक नहीं, ये अलग बात है कि वो कपड़ा हम पहनते हैं। मुहरिम को जूते मुयस्सर ना आने पर, मोज़े और तहमन ना मिलने पर शलवार पहनने की इजाज़त है। अब आप देखिए कई लोग जूता वो ढूंढते हैं जिसके ऊपर भी कुछ ना हो, हवाई चप्पल है पतली सी है, कहते हैं कि ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। बन जूता अगर यानी इवन मोज़े भी पहन सकता है बंदा, यानी ये स्पेशली तो मर्दों के लिए है ना, औरतों के लिए तो किसी किस्म के जूते की कोई पाबंदी नहीं है, कोई दुपट्टे का खास स्टाइल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन मर्दों के लिए भी मोज़े पहनने की इजाज़त है। अब किसी के पास आप देखिए कि चादर नहीं है तो शलवार भी पहन सकते हैं, यदि सहूलतें बताई जा रही हैं, कोई नहीं पहनता तो अच्छी बात है ही, ये तो ठीक है पहन रहे, लेकिन अगर ना हो तो इसमें भी एहराम बन जाता है। फिर इसी तरह से मोज़े पहनने वाले इन्हें टखनों के नीचे से काट दें, यानी मर्द के टखने खुले होने चाहिए ना, एंकल्स ये जो होती हैं ये घुटने बोलते हैं क्या, तो इधर तक फिर मोज़े को ऊपर से काट दिया जाए तो वो एक किस्म का जूता ही बन जाएगा ना नीचे। अलबत्त तहमन मुयस्सर ना आने पर शलवार चीर कर तहबंद बनाने की ज़रूरत नहीं, मजबूरी की हालत में मोज़े और शलवार पहनने पर कोई फ़दिया नहीं। देखिए इमरजेंसी तो हर एक के साथ हो सकती है ना, मिसाल है जो एहराम की चादर मर्द ने पहनी हुई थी उसको कोई गंदगी लग गई, छींटे पड़ गए, वॉशरूम में गया, टॉयलेट में गया, कुछ ना कुछ मसला हो गया, तो उसको उतार कर वो शलवार भी पहन सकता है। जी, देखिए एक है आम हालात की बातें, एक है आसानी सहूलत, मजबूरी है, मजबूरी में जाए अब क्या करेगा वो, अगर चादर है नहीं कुछ नहीं। और जो एहराम में चादर कहते हैं कि सिलाई नहीं लगी जेब नहीं, वो एक सिंबल है कि खाली हाथ आए हो। आप देखिए अपना फ़ोन रखने के लिए भी बाज़ दफ़ा मर्दों को कोई बेल्ट सी पहननी पड़ती है, उस एहराम की चादर में तो नहीं आती। असल में अल्लाह अपना आपका सब कुछ लेता है ताकि आपको फिर बहुत कुछ दे। ठीक है, फिर इसी तरह से एहराम के लिए मखसूस नमाज का ना होना, यानी एहराम बांधने के बाद कोई स्पेशल नमाज पढ़ना, जी हमारे कल्चर में बहुत आम है, लोग फ़ौरन दो नफिल पढ़ने जाते हैं, कोई मखसूस नमाज नहीं है एहराम पहनने के साथ। एहराम के लिए मखसूस वक्त की पाबंदी का ना होना, किसी वक्त भी पहन सकते हैं, غروب کا وقت ہے، طلوع کا، اشراق ہے، صبح ہے، رات ہے، کبھی بھی آپ کی فلائٹ کے حساب سے آپ جا رہے ہیں آپ احرام پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں. احرام کے لیے کوئی مخصوص نماز نہیں، البتہ اگر اس سے پہلے فرض نماز کا وقت ہو تو اس کے ادا کرنے کے بعد احرام باندھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل ہوگا، کیونکہ آپ نے نماز ظہر کے بعد احرام باندھا. اسی طرح احرام باندھنے کے لیے کوئی مخصوص گھڑی اور متعین ساتھ نہیں، اور نہ ہی کسی وقت میں اس سے روکا گیا، رات دن کی کسی بھی ساتھ میں اس کا باندھنا درست ہے. خلاصہ کیا، کوئی خاص وقت نہیں آپ کے، نہیں جی میں نہیں جمعے کو پہنوں گی، یا میں جی ظہر کے بعد نہیں، عصر کی نماز زیادہ اہم ہے، کبھی بھی پہن سکتے ہیں آپ، اس میں ڈاؤٹ نہ رکھیں. جب آپ کی نماز فلائٹ کا ٹائم ہے، بغیر کسی مبالغے کے اور مغالطے کے آپ اپنا احرام باندھ سکتے ہیں. ہاں، نماز سے بعد باندھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی تھی جب آپ گئے تھے مکہ سے، اور آپ نے ظہر کے فوراً بعد احرام باندھا تھا. معلق احرام باندھنا، احرام باندھتے وقت کسی دوسرے شخص کی مانند احرام کی نیت کرنا درست ہے. اس احرام کی نوعیت مذکور شخص کے احرام جیسی ہوگی. بعض لوگوں کا سنت سے ثابت شدہ اس آسانی کو زمانہ نبوت سے مخصوص کرنا خالی از دلیل ہے. اب یہ معلق کیا ہوتا ہے؟ لٹکا ہوا. علقہ کس کو کہتے ہیں؟ لٹکی ہوئی چیز کو. احرام باندھنے کے وقت کسی دوسرے شخص کی طرح احرام کی نیت کرنا. آپ دیکھیں نا کہ جیسے ابھی بات ہوئی کہ احرام آپ نے باندھا، کس نیت سے باندھا ہے؟ آپ دعاؤں میں دیکھیں گے بک میں تو احرام باندھتے وقت لل عمرہ یا لل حج کا لفظ بھی آتا ہے. پھر آپ کسی دوسرے کے لیے احرام باندھتے ہیں، جیسے آپ کو بتایا آپ کو کہ آپ کسی دوسرے کے لیے حج کر رہے ہیں تو اس کی طرف سے احرام ہوگا نا. کوئی نیت کیے بغیر بھی احرام باندھ سکتے ہیں. پھر نیت کب کریں گے؟ جب اس میقات پہ پہنچیں گے. یہ مراد ہے. آپ پاکستان میں کراچی یا لاہور ایئرپورٹ پہ احرام باندھتے ہیں، کوئی نیت نہیں کی بیٹھ جائیں، کپڑے پہن لینے سے. یہاں اصل مطلب یہ کہ صرف وہ وائٹ چادریں پہننے سے آپ احرام کی حالت میں نہیں جاتے. اللہ نہ کرے اگر آپ کا ارادہ بدل جائے تو اتار کے جا سکتے ہیں، کوئی کفارہ نہیں ہے. نیت کب کرنی ہے؟ جب اس جگہ پہ پہنچنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک احتیاط ہے نا. اسی طرح دیکھیے، بعض دفعہ کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ میں روک دی جاؤں گی. انشاءاللہ وہ دعاؤں کی بک میں بھی اس کا ایک پورا ٹاپک ہے. جیسے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے گئے لیکن روک لیے گئے حدیبیہ کے مقام پہ. سب کو ہی پتہ سن 6 ہجری میں. تو اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ آپ کو روک دیا گیا تھا، تو اب آپ واپس آئے تھے نا. آج بھی کسی کو ڈر ہے. ایک عورت ہے، اس کی ڈیٹ قریب ہے، اب اس کو نہیں پتا کہ کس وقت میری ڈیٹ آ جائے گی. تو پھر جب وہ گزرے گی میکا سے تو وہ دعا کرے گی کہ اللہ میں وہاں رک جاؤں گی جہاں تو مجھے روک دے گا. یعنی یہ ساری سہولتیں ہیں، اللہ نے ہمارے دین میں مشکلیں نہیں ڈالی ہیں. متعلق احرام کا معتبر ہونا، عمرے، حج یا حج کی کسی مخصوص قسم کا تعین کیے بغیر باندھا ہوا احرام معتبر ہے. اس کے تعین کا بعد میں محرم کو اختیار ہے. یعنی معلق کون سا ہے کہ ابھی نہیں پتا کس کے لیے، لیکن مطلق کہ آپ کو پتا کس چیز کا ہے، عمرے کا احرام ہے یا حج کا ہے. دونوں صورتوں میں بہتر تو یہی ہے کہ آپ کو پتا ہو، لیکن سہولت دونوں میں موجود ہے. پھر مشروط احرام، یہ سمجھیے گا، اس میں آپ کو انشاءاللہ وہ سوال کا جواب ملے گا. احرام باندھتے وقت کسی رکاوٹ کے پیش آنے پر حلال ہونے کی شرط کرنا درست ہے. ایسی صورت میں رکاوٹ آنے پر حلال ہونے سے نہ تو فدیہ لازم ہوگا اور نہ ہی قضا. البتہ فرض حج ہونے کی صورت ہونے میں اسے بعد میں ادا کرنا ہوگا. سنت سے ثابت شدہ اس آسانی کو کسی امتی کے قول کی وجہ سے ختم نہیں کیا جا سکتا. اس آسانی کے ثابت ہونے اور اس کی تاویل کے حوالے سے اعتراضات بے وزن ہیں. اب یہ دیکھیں مشروط کیا ہے. آپ یہاں سے گئے بالفرض، سعودی حکومت نے آپ کو انٹر ہی نہیں ہونے دیا، آپ کے پیپرز میں کوئی مسئلہ ہے، ویزا نہیں ان کو پسند آیا، وہ آپ کو کہتے ہیں واپس جائیں. بس اگر آپ نے مشروط باندھا ہوگا نا کہ بھائی اگر میں داخل ہو سکی تو ہو جاؤں گی، نہ ہو سکی تو نہیں، تو کوئی فدیہ نہیں ہے. ہاں اگر فرض حج تھا تو حج تو آپ نے ویسے بھی کرنا ہی تھا. ادھر سے پلٹنے کی وجہ سے نہیں، حج کے فرض ہونے کی وجہ سے آپ اگلے سال دوبارہ حج کرنے آ جائیں، یہ مراد ہے. ٹھیک ہے. غیر مشروط احرام سے ناگہانی حالت میں نکلنے میں آسانی. ایسا شخص احرام جاری رکھنے کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کی صورت میں میسر آنے والی قربانی کر کے احرام کھول دیں. یعنی یہ اب آپ کے، اب میرے لیے عام بات ہے، آپ یہاں سے نارمل حج کر کے جا رہے، کوئی شرط نہیں باندھی، جیسے سب کرتے ہیں، رک گئے، کسی وجہ سے روک دیے گئے، ایک قربانی دیں گے اور احرام سے نکل آئیں گے آپ بعد میں. آپ دیکھیے ہمارے اپنے ساتھیوں میں ایسا ہوا تھا کہ گھر سے میاں بیوی ساتھ نکلے ہیں، وہاں پہنچنے سے پہلے میاں کی ڈیتھ ہو گئی. اب جب میاں کی ڈیتھ ہوئی تو عورت عدت میں چلی گئی، حج ابھی لیٹ تھا تو اس عورت کو واپس آنا پڑتا. वो हज नहीं कर सकती, वहाँ नहीं रह सकती थी ना, तो फिर वो एक किस्म की उसकी अहराम से निकल, अब उसने गैर मशरू था, उसको तो नहीं पता था मेरे साथ ये होगा ना, तो फिर उसने अहराम ऐसे ही बांधा हुआ था, लेकिन फिर एक फ़दिया दे दिया। लेकिन अगर पहले शर्त बांध ली जाए कि अल्लाह अगर मेरे शोहर को कुछ हो गया या अगर मैं किसी वजह से रोक दी गई तो मैं अहराम खोल दूंगी, तो फिर कोई फ़दिया नहीं है। ये छोटा सा एक नीयत का फ़र्क है बस ना, एहतियात के मुताबिक। फिर इसी तरह अगर फ़र्ज़ हज हो तो आइंदा साल इसे अदा करे, वरना इस पर मुयस्सर आने वाली कुर्बानी के सिवा कुछ भी नहीं है।